नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की पूरी खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। कल राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक अपने नाम किया। आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीता। रूपा बायन ने नौवीं एशियाई टाइकंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैच जीतना भी चाहती है और उसके बाद उसको अन्य कुछ टीमों के परिणामों पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। और इससे पहले कल राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की। सुनते हैं इस मैच पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल युवा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर राजस्थान अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने की सबसे मजबूत दावेदार बन रही है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मिचेल मार्च ने जॉश इंग्लिस के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों में 109 रन की शानदार साझेदारी की। इंग्लिश 29 गेंद में 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मिचेल मार्श थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुए और सिर्फ 4 रन से शतक से चूक गए। मार्श ने 57 गेंद में 96 रन की पारी खेली। आरआर से यश राज ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया। करो या मरो के मुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 75 रन की साझेदारी की। जायसवाल 23 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंद में 105 रन जुटाए और टीम की जीत की राह आसान कर दी। सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभालते हुए 38 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। लखनऊ की ओर से आकाश महाराज और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब अगर रॉयल्स की टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन जाएगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो कहा जा सकता है कि वैभव की इस तूफानी पारी ने प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया। और प्लेऑफ के सभी समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमल मौजूद हैं स्टूडियो में। कमल, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है और चौथी टीम अब तक आईपीएल को मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या कहते हैं आपके समीकरण?
जी शक्ति, बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल में जो जद्दोजहद इतने लंबे दिनों तक मैचों की होती है वो प्लेऑफ की ही रेस के लिए होती है। और प्लेऑफ की रेस के लिए हमारे सुनने वाले सभी इस बात को जानते ही हैं कि जो हमारी तीन टीमें हैं वो पहले ही इस प्लेऑफ में अपनी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत कर चुकी हैं, लेकिन अब जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो है चौथे पायदान के लिए। तो चौथे पायदान में जो मजबूत दावेदार है, जैसा कि अभी हमने इस खास रिपोर्ट में भी प्रशांत जी की सुना कि जो कल का मैच रहा, हालिया जो राजस्थान रॉयल्स की जीत रही और 14 अंक उन्होंने इस जीत के साथ हासिल कर लिए हैं, तो सबसे मजबूत दावेदार तो वही समझी जा रही है। और उसके बाद जो और टीमें बचती हैं, जिसमें पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये भी गणितीय रूप से तो अभी दावेदार बनती ही नजर आ रही हैं, क्योंकि 13 अंक हमारे पास अभी पंजाब किंग्स के हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के 12-12 अंक हैं। तो देखना होगा शक्ति कि कौन सी टीम वे दावेदारी करती है, लेकिन हाँ राजस्थान रॉयल्स की दावेदारी अभी मजबूत नजर आ रही है। अगर हम ऊपर की टीमों की बात करें, तीन जो टीमें हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो उनके 18 अंक हैं, सबसे ऊपर की जो मजबूत टीम है वो पहले ही समझी जा रही थी, और उनके प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पहले नंबर पर हासिल की है। दूसरा जो सनराइजर्स हैदराबाद है, और उसके अलावा जो तीसरी टीम गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद है, ये दोनों टीमें बराबर बराबर 16-16 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर यानी बराबरी पर ही हैं। तो खैर अब देखते हैं कि आगे आने वाला जो चौथा नंबर का पायदान है वो कितना रोमांचक होता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती है।
जी बिल्कुल कमल, 5 मैच बचे हैं और चौथी टीम की तलाश है, तो दिन तो ज्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी इस सीजन को अपनी चौथी प्लेऑफ की टीम भी मिलते हुए नजर आएगी। और अब क्रिकेट के बाद चलते हैं एक ऐसे रोचक खेल की तरफ जिसने सबका ध्यान अपने उत्साह से अपनी तरफ मोड़ा है, और भारतीय टीम ने कल कुआलालंपुर में सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
कुआलालंपुर के टिटवांगसा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने पूरी प्रतियोगिता में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रजत पदक अपने नाम किया। भारत को हराकर मलेशिया ने पहली बार सेपेक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए ग्रुप मुकाबले में भी मलेशिया ने भारत को हराया था। भारत को फाइनल मुकाबले में मलेशिया से 15-17 और 10-15 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस फाइनल मुकाबले में जुझारू प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वे रजत पदक की चमक को सोने में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि भारत ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत ने सेमीफाइनल में म्यांमार को 2-1 से हराया था, जबकि मलेशिया वियतनाम को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे पर 2-0 से जीत दर्ज की थी। किक वॉलीबॉल और फुट वॉलीबॉल के नाम से प्रचलित सेपक टकराव मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का एक रोमांचक खेल माना जाता है। यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें खिलाड़ी हाथों का उपयोग किए बिना केवल अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर की मदद से गेंद को नेट के पार भेजते हैं। जहां मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा, संतुलन और शरीर के लचीलेपन का एक शानदार तालमेल देखने को मिलता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
जी एक शानदार तालमेल जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, हुनर और टैलेंट का भी तालमेल दिखाते हैं, और ऐसा ही कुछ तालमेल कल फुटबॉल के मैदान पर देखने को मिला, जहां आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं आर्सेनल की जीत पर ये डिटेल्ड रिपोर्ट।
आर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच कल 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद आर्सेनल को विजेता घोषित किया गया। कल इंग्लैंड के वाइटालिटी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पेप गार्डियोला की टीम को खिताब रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी, लेकिन बॉर्नमर्थ के शानदार प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच का सबसे अहम पल 39वें मिनट में आया, जब 19 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी एली जूनियर क्रूपी ने शानदार गोल कर बॉर्नमर्थ को बढ़त दिलाई। एड्रियन ट्रफर्ट के पास पर क्रूपी ने बेहतरीन पहला टच लिया और फिर एक कर्विंग शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने बराबरी का गोल कर सिटी की वापसी के साथ ही जीत की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन मैनचेस्टर की खुशी अधिक समय तक नहीं रह सकी। कुछ ही सेकंड बाद मैच समाप्त होने की घोषणा हुई। आर्सेनल और मैनचेस्टर को अब 1-1 मुकाबला और खेलना है, लेकिन 4 अंकों की बढ़त के कारण आर्सेनल को विजेता घोषित कर दिया गया है। आर्सेनल के मुकाबला हारने या मैनचेस्टर के मुकाबला जीतने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिकेल आर्टेटा की अगुवाई में आर्सेनल ने शानदार खेल दिखाया। सीजन में आर्सेनल ने कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड भी बनाया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमर्थ के बीच हुए मैच के ड्रॉ होने की खबर आते ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर हजारों आर्सेनल समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब आर्टेटा की टीम के पास इतिहास रचने का एक और मौका है। आर्सेनल 30 मई को बुडापेस्ट में यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 2025 में पेरिस सेंट जर्मेन एफसी से मुकाबला करेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
यही फुटबॉल की लीग की वो दुनिया है जहां पे रोज सैकड़ों कीर्तिमान बनते हैं और सैकड़ों कीर्तिमान टूटते हैं। और अब फुटबॉल के बाद चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत के लिए आज का दिन कुछ अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ नहीं नजर आया। और अगर देखा जाए तो अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की मुख्य उम्मीद लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय का सफर आज इस प्रतियोगिता में समाप्त हो गया। और अब इस उम्मीदों की डोर को लेकर चलते हैं उलान बटोर की तरफ, जहां रूपा बायर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित 9वीं एशियाई टाइकेंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ बायर ने एशियाई टाइकेंडो चैंपियनशिप में लगातार दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार पदक के साथ रूपा ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि वे एशियाई खेलों 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। इस उपलब्धि के बाद हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला ने रूपा से बातचीत की, जहां रूपा ने इस प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव हमसे साझा किए।
नमस्कार रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते, थैंक यू।
नाइन्थ एशियन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए आपको बधाई।
थैंक यू सो मच आप सभी को।
किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने 28 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, और आफ्टर 2 इयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा तो ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है।
किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था, क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उसपे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है।
आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है।
ताइक्वांडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, इसमें डिफरेंट वही है कि ताइक्वांडो में क्यूरिगी और पुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है, बट पुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में।
इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है?
अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी है, वापस जाएंगे इंडिया जाने के बाद मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग के हिसाब से अभी होंगे तो और अच्छा रहेंगे। अभी जाएंगे वापस, फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है शेड्यूल है उस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है।
आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है, तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका भी रूपा। और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ी आप और आपने अपने अनुभव साझा किए, और ये दूसरा मौका है जब आप जुड़ी हैं, और ये दूसरी उपलब्धि है जब आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, और हमें उम्मीद होगी कि आप आगे भी ऐसे ही कुछ और पदक जिनकी चमक इससे और ज्यादा उज्ज्वल हो उनके साथ देश का नाम रोशन करें और हमारे कार्यक्रम के साथ अपने अनुभव साझा करती रहें। और इसी तरह की एक उपलब्धि हॉकी की फील्ड से कोच बलदेव सिंह ने हासिल की है, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास स्थित एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को हॉकी का एक एपिसेंटर बना दिया है, जहां से खिलाड़ी आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक पे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन लेकर के इस लजिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन पे भी बात की जाएगी हमारे आने वाले अंक में। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com यानी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।